नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखी गई तीतुस के नाम पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, सुनते हैं ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए फिर से तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने जा रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से तीतुस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और हमने पिछले अध्ययन में हमने इस पत्री के परिचय और इसके रूपरेखा को देखा है और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और इस पत्री के मुख्य विषयों में जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के इस अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे अत्यंत दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन कर सकें। आज हम तीतुस की पत्री से अध्ययन करते हैं तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब हम आपके वचन में से सुनते और सीखते हैं तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। और हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो इस समय बीमार अवस्था में है, निराश और परेशान है या किसी प्रकार के तनाव और दबाव में है, जो अपनी नौकरी के तलाश में है, जो अपने वैवाहिक जीवन में अच्छे जीवन साथी की तलाश में है और कुछ ऐसे हैं जो माता पिता निराश और परेशान है। पिता परमेश्वर, आप उन्हें अपनी शांति प्रदान करें। आज के वचन के द्वारा हम में से हर एक को आप सामर्थ्य दें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम देख रहे हैं कि पौलुस ने तीतुस को निर्देश दिया है कि कलीसिया को सुव्यवस्थित होना है और परमेश्वर की वचन की शिक्षा उन्हें देना है, साथ ही साथ अच्छे कामों में जीवन व्यतीत करना है। जैसा कि हमने पिछले अध्ययन में देखा कि एक व्यक्ति जो उद्धार प्राप्त कर लेता है वह ईश्वर भक्ति हो जाता है, यदि वह ऐसा नहीं करता है तो हमें देखना है कि उसका विश्वास कहाँ है। मेरे प्रियो, हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हमारा उद्धार कर्मों की अपेक्षा अनुग्रह से हुआ है और हमारा उद्धार जीवन आचरण से प्रकट होना है जो ईश्वर भक्ति का जीवन है। क्रेते जो स्थान है वहां के लोग जो क्रेते वासी हैं कहते थे कि हम अनुग्रह से उद्धार पाते हैं जिसमें कर्मों का स्थान नहीं है, तो हम जैसा चाहें वैसा अनैतिक जीवन जी सकते हैं। इसके प्रतिवाद में पौलुस कहता है कि परमेश्वर का सत्य जीवन में ईश्वर भक्ति उत्पन्न करता है। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि उद्धार प्राप्ति के बाद हमारे जीवन में एक ईश्वर भय आना चाहिए, ईश्वर भक्ति आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रेते के विश्वासी ऐसा नहीं कर रहे थे, इसलिए पौलुस तीतुस को पत्र लिखता है। और यहाँ पर हम तीतुस की पत्री एक अध्याय उसके दो पद में हम पढ़ते हैं जहाँ पर लिखा है कि उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, लिखा है कि उस अनंत जीवन की आशा पर। यहाँ विचार यह है कि अनंत जीवन की आशा पर निर्भर करें। तीतुस को लिखे पत्र में हम देखेंगे कि पौलुस अनुग्रह को तीन कालों में बांटता है। तीतुस की पत्री 2 अध्याय उसके 11 से 13 पद में हम इन तीनों कालों को देखते हैं। परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। यह समय बीत गया है, हमें चेतावनी देता है, यह वर्तमान समय है और धन्य आशा यह भविष्य की बात है। पौलुस कहता है कि हमें इस आशा पर निर्भर करना है। देखते हैं परमेश्वर जो झूठ नहीं बोल सकता। मेरे प्रियो, यह आशा उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा है जो झूठ नहीं बोलता है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 4 पद में पौलुस कहता है, कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। कभी कभी हम विश्वासी अपने जीवन से परमेश्वर को झूठा बना देते हैं। हम कहते तो हैं कि हम विश्वास करते हैं, परंतु हम विश्वास का आचरण नहीं करते। इसलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। हम परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं जो इस पृथ्वी पर हैं। यदि हम झूठ बोलते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं या बनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जन झूठ नहीं बोलता। मेरे मित्रों, मैंने अनेक बार चाहा कि उन बातों पर प्रचार करूं जो परमेश्वर नहीं करता है। एक बात यह है, परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता है। क्या आप जानते हैं कि आप प्रतिदिन जो देखते हैं वह परमेश्वर नहीं देख पाता है? आप अपने बराबर का इंसान देखते हैं, परंतु परमेश्वर के बराबर का कोई दिखाई नहीं देता। परमेश्वर झूठ क्यों नहीं बोल सकता? आप वह काम कर सकते हैं जो परमेश्वर नहीं कर सकता। परमेश्वर को अपने आप में सच्चा होना है। वह पवित्र है और धर्मी है, यह उसका स्वभाव है, और वह अपने स्वभाव विरोधी कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कि उसके लिए कुछ करना असंभव है, परंतु वह इसलिए नहीं कर सकता कि वह अपने स्वभाव के प्रति सच्चा रहना चाहता है। वह धर्मी है, वह न्यायी है और कभी भी धोखा नहीं देता है। वह एक ऐसा परमेश्वर है जिस पर आप निर्भर कर सकते हैं, निर्भर हो सकते हैं। मेरे मित्रों, कई बार हम मनुष्यों पर भरोसा करते हैं, उन पर निर्भर हो जाते हैं और अंततः हमें धोखा ही मिलता है। वचन में लिखा है, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने सनातन से की है। यह प्रतिज्ञा अनादिकाल से की गई है, क्योंकि वह धोखा नहीं देता है, वह झूठ नहीं बोलता है। तीतुस की पत्री 1 अध्याय उसके 3 पद में हम सब पढ़ते हैं, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। पौलुस कहता है कि ठीक समय पर, अर्थात अपने समय में। परमेश्वर हर एक काम अपने सुव्यवस्थित ढंग से करता है। वह प्रत्येक फूल को अपने समय के अनुसार ही खिलाता है और फूल अपने समय में खिलकर सबको आनंद देती है। वह उसकी ऋतु आने तक ही रुकता है। आगे लिखा है कि ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट कर। वचन का अर्थ है शुभ संदेश या तुरही। उस युग में तुरही बजाकर घोषणा की जाती थी। राजा का उद्घोषक तुरही बजाता था और जनता के एकत्र होने पर वह राजा का आदेश सुनाता था। यहाँ कहने का अर्थ यही है कि परमेश्वर ने अपने समय पर घोषणा करके अपना संदेश प्रकट किया और वचन के घोषणा का काम उसे सौंपा गया था। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। पौलुस को यह काम सौंपा गया था कि परमेश्वर के वचन को बांटे। तीतुस की पत्री 1 अध्याय के 4 पद में लिखा है, तीतुस के नाम जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है, परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि तीतुस के नाम जो मेरा सच्चा पुत्र है। पौलुस ने ही तीतुस को प्रभु यीशु से उद्धार का ज्ञान और परिचय करवाया था, अर्थात उसे उद्धार के ज्ञान को बताया और फिर उसके उद्धार के आनंद के द्वारा से वह उसका पुत्र भी बन गया। तीतुस पौलुस का आत्मिक पुत्र था। आगे लिखा है कि परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और शांति मिलती रहे। परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है और इस कारण परमेश्वर हम पर दया दिखाता है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मैंने परमेश्वर की असीम दया का उपयोग किया है। मैं परमेश्वर का आभारी हूँ कि वह भला है और मेरे साथ मेरी उद्दंडता और अवज्ञा के आधार पर वह व्यवहार नहीं करता है। वह मेरे साथ बस भलाई ही भलाई करता है, अनुग्रह, दया और शांति। शांति विश्वास की वर्तमान धरोहर है, परंतु शांति के राजकुमार के आगमन पर जो शांति आएगी वह महान है। यह सब पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह से है। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि एक व्यवस्थित कलीसिया में अभिषिक्त प्राचीनों का होना अवश्य है, जो एक निर्धारित और अनिवार्यता को पूरी करते हैं। यह एक लंबा शीर्षक है, परंतु यह धर्मशास्त्र के एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अंश का शीर्षक है। तीतुस की पत्री 1 अध्याय उसके 5 पद में हम पढ़ते हैं, मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पौलुस ने तीतुस को क्रेते में छोड़ दिया था कि वह प्राचीनों की सहायता से स्थानीय कलीसिया को संगठित करे, क्योंकि वे वहां के आत्मिक अगुवे थे। क्रेते का द्वीप भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप समूह था। यूनानी द्वीपों के स्वरूप इस महान द्वीप समूह में दंत कथा का बोलबाला था। उनकी प्रथा के अनुसार मिनोस ने वहां कानून बनाया था। उसने वहां के समुद्री डाकुओं को हराकर नौसेना का निर्माण किया था। ट्रोय से युद्ध करने के बाद उस द्वीप समूह के मुख्य नगरों ने अपने आप को स्वतंत्र राजतंत्र बना लिया था। सन 67 में क्रेते रोमी साम्राज्य का भाग बनाया गया था और इन सब नगरों में कलीसियाओं की स्थापना हो चुकी थी। पौलुस ने उन द्वीप समूहों में प्रभावी प्रचार किया था। धर्मशास्त्र में इसका वृतांत हमें नहीं दिया गया है। रोम की यात्रा से पूर्व वह क्रेते द्वीप समूह में प्रचार करने को गया। मेरे मित्रों, इसका प्रमाण हमारे पास नहीं है, परंतु इस पत्र से प्रकट है कि उसने वहां प्रचार कार्य किया और तीतुस को वहां उन कलीसियाओं की व्यवस्था करने के लिए छोड़ दिया जिन्हें उसने तीतुस के सहयोग से स्थापित किया था। क्रेते एक अच्छा स्थान नहीं था और वहां के निवासी भी बुरे थे। जैसा कि आज हम कई स्थानों में जानते हैं कि वह नगर या स्थान लोगों के द्वारा से बुरा माना जाता है, लोग उस स्थान पर जाना नहीं चाहते हैं। पौलुस स्वयं कहता है कि वे झूठे थे और झूठ के लिए माने जाते थे। ध्यान दीजिए, इसी कारण यूनान भाषा जो उस समय की भाषा थी उसमें झूठ का एक पर्यायवाची शब्द क्रेते जेन था। उन्हीं के एक कवि ने कहा, क्रेते के 100 नगर इनकार नहीं कर सकते हैं कि वे झूठे हैं। यद्यपि वे झूठ के लिए प्रसिद्ध थे और पौलुस उनके विषय में अशुभ बातें भी कहता है, अनेकों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया था। इसी कारण पौलुस तीतुस को लिखता है कि वहां कलीसियाओं को संगठित किया जाए। हम आगे पढ़ते हैं, वचन में लिखा है कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। प्राचीन कलीसिया के लिए मनुष्यों का वरदान है। किसी पर अपना हाथ रखकर संस्कार पूरा करना उसे प्राचीन नहीं बना देता है, परंतु मेरे विचार में यह करना महत्वपूर्ण है, और विशेष करके उनके साथ जिन्हें प्राचीन होने का वरदान प्राप्त है। मेरे विचार में क्रेते में प्राचीन तो थे, परंतु उनका अभिषेक नहीं किया गया था। उनमें कलीसिया के संचालन का वरदान था, परंतु अधिकार से वे रहित थे। अतः तीतुस को उनका अभिषेक करके उन्हें अलग करना था और प्रत्येक नगर में उनकी नियुक्ति करना था। तब हम पढ़ते हैं, आगे लिखा है, मेरी आज्ञा के अनुसार। पौलुस के कहने का अर्थ था कि उसके अधिकार के अधीन उसने तीतुस का अभिषेक किया था और अब वह उन नगरों में प्राचीनों की नियुक्ति करे। मेरे मित्रों, जो मनुष्य प्राचीन के पद पर हो उसमें प्राचीन का वरदान भी होना चाहिए। कुछ लोग कलीसिया के पदाधिकारी तो बना दिए जाते हैं, परंतु उनमें वह वरदान नहीं होता है। आज की कलीसियाओं में आधे से अधिक समस्याएं यही हैं। समस्या का दूसरा आधा भाग यह है कि वरदान युक्त मनुष्यों को कलीसिया का पदाधिकारी नहीं बनाया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि कलीसियाएं गलत लोगों के हाथों में हैं, और समस्या का दूसरा आधा भाग है कि वरदान युक्त मनुष्यों को कलीसिया का पदभार नहीं सौंपा जाता है। परिणाम यह होता है कि कलीसियाएं गलत हाथों में पड़ जाती हैं और नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और यही कारण है कि आज हम देखते हैं कि बहुत सारी कलीसियाओं में समस्याएं हैं और पादरी वहां की सेवकाई को ठीक रीति से नहीं कर पाते हैं। कारण, उन्हें सही प्राचीन नहीं दिए गए हैं, या सही प्राचीन जो वरदान युक्त हैं उनको वह कार्यभार नहीं सौंपा गया है। मेरे प्रियो, आज हमें चाहिए कि हम सही व्यक्ति को उन कार्यों के लिए नियुक्त करें। कलीसिया का पदभार संभालने वालों के लिए अनिवार्यताएं, जिसे हम पढ़ते हैं तीतुस की पत्री 1 अध्याय उसके 6 पद में, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हों, जिनके बच्चे विश्वासी हों और उनमें लुचपन और निरंकुशता का दोष ना हो। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए कि कौन कलीसिया का प्राचीन हो सकता है। पहली बात, निर्दोष। इसका अर्थ यह नहीं कि वह सिद्ध हो जिसमें पाप ना हो। कहने का अर्थ यह है कि उस पर लगाया गया दोष सच ना हो, उसका जीवन निंदा का कारण ना हो। यदि उस पर कोई उंगली उठाए और उसे अनिष्ठा का दोषी ठहराए तो मसीह के प्रयोजन को हानि पहुंचती है। ऐसे में मनुष्य की प्रतिभाएं नहीं देखी जाएंगी। यदि कोई दोष लगाए कि उसकी भाषा मसीह के प्रति समर्पण नहीं दर्शाती तो प्रभु यीशु का प्रयोजन प्रभावित होता है, और ऐसे मनुष्य को कलीसिया का पदाधिकारी नहीं होना है। आगे लिखा है कि एक ही पत्नी के पति हों, जिनके बच्चे विश्वासी हों। यदि कोई पदाधिकारी अपने बच्चों को प्रभु यीशु के बारे में अर्थात भय में नहीं रख सकता तो उसे कलीसिया का पद नहीं संभालना चाहिए, क्योंकि बच्चे प्रभु यीशु के बारे में नहीं जानते हैं और वह उन्हें नहीं संभाल पाता है या नहीं सिखाता है, तो उसे यह पदभार नहीं लेना चाहिए। मेरे मित्रों, आप मुझे गलत ना समझें। मैं अनेक मसीही परिवारों में देखता हूं कि पुत्र या पुत्री प्रभु यीशु से दूर हैं, और देखने में ऐसा लगता है कि उन्हें मसीह की पहचान में नहीं रखा गया है। एक मनुष्य अति उत्तम व्यक्तित्व रखता है जिसका मसीही परिवार बहुत अच्छा है, और उसके पुत्र या पुत्री को विश्वास से दूर जाने में उसका कोई दोष नहीं है, तो भी वह कलीसिया में कोई पद ना संभाले, क्योंकि कलीसिया का पदाधिकारी होने के कारण उसे किसी के अनाचार के लिए निर्णय लेना होगा। ऐसी स्थिति में दोषी मनुष्य उस पर उंगली उठाकर कह सकता है, आप अपने आप को पहले देखें, अपने पुत्र को देखें या अपनी पुत्री को देखें। जी हाँ, आपको मेरा न्याय करने का क्या अधिकार है, लोग यही कहेंगे, तब उसे तकलीफ होगा। अतः मसीह के कारण, कलीसिया के पद के कारण पदाधिकारी के बच्चों को विश्वासी और आज्ञाकारी होना है, उन्हें सिखाना है, प्रभु के संगति में बढ़ाना है। आगे लिखा है, उनमें लुचपन और निरंकुशता का दोष ना हो, अर्थात वे लंपट ना हो या व्यर्थ की बातों में उलझे हुए ना हो, वे जुलूसों में नारे लगाने वाले ना हो, उन्हें प्रभु यीशु के महिमान्वयन का और वचन के प्रसारण का ही जीवन जीना है, ताकि लोग उनके जीवन को देखें और परमेश्वर को जानें और उसकी महिमा करें। तीतुस की पत्री 1:7 में लिखा है, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, ना हठी, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट करने वाला और ना नीच कमाई का लोभी हो। यह अत्यधिक व्यवहारिक है कि धर्माध्यक्ष हठी ना हो, क्योंकि वह परमेश्वर का भंडारी है और कलीसिया का प्रतिनिधि भी है। वह कलीसिया में इसलिए है कि परमेश्वर की इच्छा खोजे और उसे पूरा करे। लिखा है कि पहली बात, ना क्रोधी अर्थात चिड़चिड़ा ना हो, दूसरा ना पियक्कड़ अर्थात लालची ना हो, लोभी ना हो और मतवालापन ना करता हो। मेरे मित्रों, धर्माध्यक्ष में ये गुण होना चाहिए, उससे आत्मिक और शारीरिक दोनों ही परिप्रेक्ष्यों में परिपक्व होना है। धर्माध्यक्ष एक प्राचीन होता है जो एक प्रकार से कलीसिया का शासक है। कलीसिया में एक धर्माध्यक्ष होने का प्रमाण कहीं नहीं है, धर्माध्यक्ष अनेक होने हैं। हम देखते हैं आगे लिखा है कि क्रेते में प्राचीनों के होने और ना होने पर विवाद है कि तीतुस उनकी नियुक्ति करे, क्योंकि वहां पर प्राचीन नहीं है। मेरे विचार में तो वहां प्राचीन थे, और यदि नहीं थे तो तीतुस उन्हें नियुक्त करे तथा विश्वासी तीतुस के अधिकार को स्वीकार करें। परंतु यह मुख्य बात नहीं थी और न ही आज की कलीसिया में होना है। पौलुस जिस बात पर बल देता है वह इन पदाधिकारियों के जीवन में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित अनिवार्यताएं हैं। केवल उन्हीं के आधार पर वे पदाधिकारी बन सकते हैं। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि कलीसिया में एक पदाधिकारी होने के लिए उसके कौन कौन से गुण होने हैं, उसकी योग्यताएं क्या हैं। आज मुझे और आपको अपनी कलीसियाओं में भी ऐसे ही लोगों को रखना है जो कलीसिया की देखभाल कर सकते हैं, जिससे कि कलीसिया आत्मिक रीति से बलवंत और दृढ़ की जा सके। मेरे प्रियो, आइए आज हम अपने जीवन को इस वचन के प्रकाशन में देखें और कलीसिया के उन आवश्यकताओं को भी हम समझें, ताकि अपने कलीसिया में ऐसे लोगों को नियुक्त करें और अपने कलीसिया को आत्मिक रीति में बढ़ाएं। आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
मुझे अपना दीदार पहचान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो। मुझे अपना दीदार पहचान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो। हे यीशु, मुझे तुम अपना बना लो, मुझे सेवा करने का वरदान दे दो। हे यीशु, मुझे तुम अपना बना लो, मुझे सेवा करने का वरदान दे दो। मुझे अपना दीदार पहचान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो। मेरे मन के मंदिर में आकर विराजो, मुझे प्रेम करने का वरदान दे दो। मेरे मन के मंदिर में आकर विराजो, मुझे प्रेम करने का वरदान दे दो। मैं जब डगमगाऊं परीक्षा में आकर, मुझे उस समय बल है बलवान दे दो। मैं जब डगमगाऊं परीक्षा में आकर, मुझे उस समय बल है बलवान दे दो। हे यीशु, मुझे तुम अपना बना लो, मुझे सेवा करने का वरदान दे दो। मुझे अपना दीदार पहचान दे दो, मुझे भक्ति करने का कुछ ज्ञान दे दो। मैं सतपथ पे जीवन को बलिदान कर दूं, मुझे ऐसी हिम्मत जिगर जान दे दो। मैं सतपथ पे जीवन को बलिदान कर दूं, मुझे ऐसी हिम्मत जिगर जान दे दो। जीवन नदी में भंवर गहरे गहरे, ये नैया न डूबे तुम्हें ध्यान दे दो। जीवन नदी में भंवर गहरे गहरे, ये नैया न डूबे तुम्हें ध्यान दे दो। हे यीशु, मुझे तुम अपना बना लो, मुझे सेवा करने का वरदान दे दो, मुझे अपना दीदार पहचान दे दो, मुझे भक्ति।